পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। নমাবদন্নায় কৃষ্ণ প্রেম প্রদায়তে কৃষ্ণায় কৃষ্ণ চৈতন্য নাম্নে গৌরোত্তিষে নমঃ। জয়রূপ সনাতন ভট্টর গুণাত শ্রীজীবী গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ এছয় গোসাই করি চরণবন্দন যাওয়াইতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পুরন মহাভাবস্বরূপতম কৃষ্ণ প্রিয়া বরীয়সী প্রেমভক্তি প্রয়দেবী রাধিকেতাং নমাম্যহম। রাধে বৃন্দাবনাধীশে করুণামৃতবাহিনী কৃপয়া নিজপদাব্জ দাস্যং মহ্যম প্রদীয়তাম। বন্দে নন্দব্রজেস্ত্রীণাম পাদরনুমভীক্ষ্ণশ যশাং হরি কথোদ্গীতম পুনাতি ভুবনত্রয়ম্। জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দয়াল প্রভু নিত্যানন্দ। জয় শ্রী অদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি শ্রী গৌরভক্তবৃন্দ। হরি কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম হরে রাম 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 হরে হরে। বলো শ্রী গুরুজি মহারাজ কি জয়, গুরু পরম্পরা কি জয়, অনন্ত অনন্ত কোটি বৈষ্ণববৃন্দ কি জয়, সপার্ষদ গৌরহরি কি জয়, গৌর নিত্যানন্দ প্রভু কি জয়, জগন্নাথ বলদীপ সুভদ্রা সুদর্শনজীব কি জয়, ভক্তবিঘ্ন বিনাশনকারী নৃসিংহদেব কি জয়, ভক্তরাজ প্রহ্লাদ মহারাজ কি জয়, সর্বাভীষ্টপ্রেতা গিরিরাজ গোবর্ধনজীব কি জয়, গোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহনজীব কি জয়, জয় ব্রজমণ্ডল ধাম কি জয়, ব্রজবাসী ভক্তবৃন্দ কি জয়, ব্রজেশ্বরী মধেশ্বরী প্রাণেশ্বরী শ্রীমতী রাধারানী কি জয়, ব্রজদেবীগণ কি জয়, ঊর্জাব্রত কার্তিকব্রত নিয়মশিবা দামোদরব্রত কি জয়, সমবেত গৌরভক্তবৃন্দ কি জয়, গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বল। শ্রীশ্রীম দামোদর অষ্টকম সত্যব্রত মুনি সনাতন গোস্বামী এবং অল সমস্ত গুরুবর্গ বৈষ্ণববৃন্দ উনকে হয়তো কৃপা সে আজ আমলোক ব্রত পালন করনে কে লিয়ে প্রয়াস মাত্র কর রহে হ্যাঁ। ইহাঁ পর আমলোক নে অভি তক শুনা সনাতন গোস্বামী ইহা সত্যব্রত মুনি হ্যাঁ ইহাঁ পর কীর্তন কর রহে কি ভগবান স্বয়ং বিশ্বকে সৃষ্টিকর্তা নেই, কেবলমাত্র পালনকর্তার সংহারকর্তাই নেই, সমস্ত বিশ্বকে আপনি প্রীতি সে উনি বাঁধকে রক্ষা কেসে তো বতাতে প্রাণীমাত্র কি হৃদয় মে পরমাত্মা রূপে বিরাজমান হোনে কে কারণ সব প্রাণীয় মে কর্তৃত্ব অভিমান এবং কুছ সমঝনে কা ওর কুছ করনে কা ভি উনকা প্রবৃত্তি উদিত হুই হ্যায়। যদি পরমাত্মা কে সাথ সম্বন্ধ ন রহে তো জীব জল পদার্থ হয়ে যায়, অচেতন পদার্থ। এসলি সনাতন গোস্বামী কহতে জব বৃন্দাবন ধাম মে महाप्रभु का आदेश से यहाँ पर ब्रजमंडल आश्रय किया, तब साधन अर्थात कैसे साधन करना चाहिए और साधन के द्वारा सिद्धि कैसे प्राप्त करेंगे अर्थात भगवत कृपा कैसे प्राप्त होगा, उसके लिए महाप्रभु ने आदेश निर्देश दिया। तो नाम कीर्तन ही मुख्य है। यदि भगवान के नाम का पुनः पुनः कीर्तन किया जाए तो भगवान से हम दूर कभी जा ही नहीं सकते। यदि अन्य नामों का कीर्तन किया जाता है या किसी के चिंतन किया जाए, मनन किया जाए, तो हम वहाँ से बहुत दूर हट जाएंगे। इसलिए महाप्रभु ने कहा, कलियुग केवल नाम अधरा, सुमिर सुमिर न रहो तो रही पारा। केवल कलियुग में धन्य कली है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम इव केवलम कलोर नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरिन्न था। यहाँ बतलाया हरि का नाम नहीं, हरे नाम, अर्थात हरि के बहुत नाम है। बहुवचन में हरे नाम हो सकता है, हरि के बहुत नाम है, एक दो नहीं, असंख्य अवतार है। कौन सा नाम का कीर्तन करे, इसलिए सनातन गोस्वामी ने बतलाया कि कृष्ण से नाना विध कीर्तनेशु तत्प्रेम साक्षात जनने स्वयं द्राग। बता रहे हैं भगवान के बहुत नाम हैं, किंतु कौन सा नाम का कीर्तन करे जिससे कि भगवान के साथ हम प्रेम से बंध जाए, अर्थात हमारा चित्तवृत्ति अन्यत्र गमनागमन नहीं करे। तो कहते कृष्ण जिनके अंदर आकर्षण शक्ति है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, अर्थात भगवान स्वयं प्रेम रस के द्वारा जगत को प्लावित कर दिया। यह रस के द्वारा ही अर्थात भगवान के जो प्रिय व्यक्ति हैं, प्रियजन हैं, जिनके साथ भगवान का अत्यंत प्रगाढ़ संबंध है, उन लोगों के यदि नामों का कीर्तन करे, स्मरण करे, तो उनके स्मरण मात्र ही भगवान के नाम रूप गुण लीला हृदय में आविर्भूत होंगे। और यदि ऐसे भक्तों के प्रिय जनों के प्रेमी जनों के आश्रय न करे, तो नाम करने पर जगन्नाथ परमात्मा ब्रह्म चैतन्य या भगवान के बहुत सारे नाम हैं, अनंत असंख्य। उन नामों का कुछ गौण नाम है, कुछ मुख्य नाम है। हाँ, तो यदि गौण नाम करेंगे तो अधिक से अधिक कठोर साधन के बाद, नाम का आश्रय करने के बाद, केवल दुख निवृत्ति मुक्ति, आत्यंतिक दुख निवृत्ति एवं मुक्ति, दुख से छुटकारा मिलेगा, मुक्ति मिलेगा, किंतु वो प्रीति और प्रेम ये सामर्थ्य साध्य नहीं है। इसी सनातन गोस्वामी जब ब्रज में आए तो उनके निकट भगवान ने सब कुछ दे दिया, कुछ भी छोड़ा नहीं। सब कुछ देखें तो उन्होंने कुछ भी वस्तु को स्वीकार नहीं की। बड़े बड़े मठ मंदिर आश्रम उन्होंने उसको स्वीकार नहीं की। बहुत ग्रंथ प्रकाशन हुआ, महाप्रभु जी ने आदेश दिया, सब किया, किंतु उसमें भी उनका कोई मुँह नहीं कि अभिमान नहीं कि मैंने बहुत काम किया। और क्या किया, किसी एक समय काशी वाराणसी से शिव ठाकुर ने किसी एक ब्राह्मण को भेज दिया। बोले वो ब्राह्मण बहुत उपासना की शिव ठाकुर की कि मेरे को कुछ धन दौलत दे दो, मेरे को लड़की कुंवारी है, विवाह करना है। तो शिव ठाकुर बोले मेरे पास तो कुछ है नहीं और मैं कुछ रखता नहीं धन दौलत। यदि धन दौलत मांगना है तो वृंदावन में जाओ, वहाँ एक सनातन गोस्वामी है, उनके पास जाने से वो सब कुछ दे देंगे। तो चलते चलते वृंदावन आए तो ढूंढते ढूंढते देखा एक लंगोटी बाबा जी है और उनके पास एक कमंडलू है मिट्टी का कड़ुआ और कुछ है ही नहीं जलपात्र। तो सोचने लगा शिव ठाकुर ने ऐसे व्यक्ति के पास भेजा जिनका घर नहीं, बार नहीं, द्वार नहीं, कपड़े नहीं पहनने को, खाने को है नहीं, कोई टुकड़ा कभी चाना कभी वो भी माना, कभी पानी भी नहीं और पेड़ के नीचे पड़े रहते हैं, तो उससे क्या मांगे क्या बोले। किंतु उनका शिव जी में गाढ़ प्रगाढ़ विश्वास था। उन्होंने बोला अच्छा एक बार कह के तो देखूं। तो सनातन गोस्वामी के पास बड़े मुश्किल से, उनको फुर्सत तो है नहीं, 24 घंटा नाम गुण कीर्तन लीला कीर्तन में सब समय में ग्रंथ प्रकाशन लिखने में और सत्संग में बिताते हैं, प्रज्वलित तो करते नहीं, किसी बातचीत करते नहीं। तभी ब्राह्मण बहुत अपेक्षा करके उनसे अनुरोध की मुझे कुछ दे दो, शिव जी ने मुझे भेजा है आपके पास। बोले मैं क्या दूँ, मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं तो किसी एक समय राजा के नौकर था, बहुत धन दौलत था, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि सनातन गोस्वामी आते समय एक नौकर को साथ ले आ रहे थे, तो नौकर जब साथ चले जंगल पार करने के लिए तो जंगल के अंदर से बहुत भारी जंगल है, तो पार करते समय जाड़े का दिन आधी रात के समय कोई लंटन जला करके उनको स्वागत करके अपने महल में ले गया जंगल के अंदर में। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं भाई अनजान व्यक्ति है, इतना प्यार कर रहा है, आया गर्म पानी कर दी और रजाई गद्दा दे दी और तकिया और गरम गरम खाना बना के ले आया, भाई ये क्या क्यों कर रहे हैं, ये तो कुछ दाल में काला है, क्योंकि कोई लेना नहीं देना नहीं, परिचय नहीं, कुछ नहीं, कोई खमा खमे क्यों इतना प्रीति कर रहे हैं, ये प्रीति का रीति तो दूसरे तरह का है, ये तो काल है। तो उन्होंने सब कुछ देखा, दूध गर्म करके लाया जंगलों के अंदर में, कितना खातिर कर रहे हैं जिसकी कोई हिसाब नहीं। तो उन्होंने नौकर से पूछा, सेवक से, भाई तुम मेरे साथ आए हो, दिख रहे हो हम भगवान के लिए वृंदावन के लिए चल दिए और कितना खातिरदारी हो रही है, कितने पूजा देखो हाँ, और गरम तेल लाया मालिश करके सुलाएंगे, नौकर चाकर कितने सारे और दे दिया, तो ऐसा क्यों, एक बात बताओ तुम्हारे पास कुछ है तो क्या है, मेरे पास 8 मोहर है, इससे लाया रास्ते में कोई काम आएगा, बहुत दूर जाना है, तो बोले दे दो ये काल सर्प दो मुझे दो, दे दिया। तो वहाँ के मालिक जो था सरदार उसके पास गया वन के जंगल के, जाकर वह साहब हमारा एक अनुरोध है, विनती है। बोले क्या, बोले हमारे पास ये 8 मोहरे हैं, आप ये ले लो। तो नहीं नहीं नहीं, मैं क्या करूँगा, हमारा धर्म है साधु संतों की सेवा करना, जंगलों में कोई है नहीं, मैं आपकी सेवा के लिए तैयार हुआ और कुछ करना चाहता हूँ। बोले नहीं आप ये ले लीजिए, आप नहीं लेंगे कोई और आएगा और पकड़ेगा, आप ले लो। बोले आप बड़े चतुर हैं, हम क्या करते हैं, हम ज्योतिष जानते हैं, कौन जंगल से गुजर रहे हैं उनको हम देख लेते हैं, पकड़ लेते हैं, खूब आदर जत्न करके अंतिम खिला पिला करके जब सुलाते हैं तो हम उसको जान ले लेते, मार देते, गाड़ देते मार के। तो आपने बहुत, आप बहुत चतुर हैं, ठीक है 8 तो नहीं आपके 9 मोहरे हैं। तो अच्छा, तो 8 ले लिया और बोले मैं सनातन गोस्वामी बोले मेरे को रास्ता थोड़ा दिखा दो, मैं जंगल पार कर जाऊँ। बोले हैं मैं ये व्यवस्था कर दूँगा, मारूँगा नहीं और नष्ट नहीं करूँगा, रास्ता दिखा दूँगा, किंतु आपके सेवक के पास एक मोहर और है। तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, जब सेवक के साथ जंगल पार करा दिया, तो बोले तुम्हारे पास कुछ और है? तो है। तो क्या है? एक मोहर है। बोले तुम फिर भी एक काल सर्प साथ में लेकर के चला, तुम भगवान में भरोसा नहीं, विश्वास नहीं, जाओ वापस जाओ, अब मेरे साथ नहीं जा सकता, अब मैं लूंगा नहीं साथ में, चलो। बहुत रोए पीटे किंतु नहीं, छोड़ दिया। अकेले आ रहे हैं, आते आते गंगा किनारे सोनपुर तो पहुँचे, तो वहाँ पशुओं का पेट है बहुत बड़ा, आज भी है, तो पशुओं की मेला लग रहा है। ये गुजर रहे हैं, जाड़े का दिन है, ठंडा है, कुछ कपड़े लत्ते नहीं है, आ रहे हैं, तो ऊँचे टुंगी में हाँ उनके संपर्क में जीजा जी थे, वो राजा के राजकर्मचारी थे, राजा के पशु खरीदते थे, घोड़ा हाथी ये सब। तो उन्होंने देखा कि मेरे सनातन गोस्वामी जा रहे हैं, उन्होंने उतर के आया, मिला, तो राजा ने सनातन गोस्वामी को जेल में बंद करके चले गए थे, हाँ उड़ीसा आक्रमण किया था लूटने के लिए, वो मुसलमान बादशाह था हुसैन शाह। तो इसलिए बोले आप हमारे बड़े भाई हैं, या तो हमारे साथ चलो और नहीं तो मैं छोड़ूंगा नहीं आपको, जेल में बंद कर दी। रूप गोस्वामी पहले ही 10,000 स्वर्ण मुद्रा किसी बनिया के पास रख दिया था आने के पहले, कि विपत्ति पड़ने पर इसको काम में लगा लेना। तो जेलर को बोला ये ले लो, 5,000 ले लो, छोड़ दो मुझे। बोले बादशाह मुझे मार डालेंगे। बोले बादशाह को बोलना दिशा मैदान फिरने के लिए गया था दरिया में, छलांग लगाया, बह के चला गया। तभी उसको बोले तेरे को तो मैं नौकरी में रखा, मैं तो राजा का सचिव साधारण तो है नहीं, तो आज तेरे को नौकरी में रखा और मेरा उपकार कर दे, मैं पीर फकीर बन के मक्का मदीना चला जाऊंगा। तो बोले नहीं छोड़ूंगा नहीं। फिर 10,000 दे दी, लालच में आया, छोड़ दिया। और आते समय सेवक आया तो 9 मोहर ले आया कि ये काम आएगा। सनातन गोस्वामी ने उनको भी छोड़ दी। अब जब सोनपुर पार करके आ रहे हैं तो जीजा ने देखा, तो देखा कंबल नहीं, उसने वस्त्र नहीं, उन्होंने एक बेट भोट कंबल बहुत सुंदर कीमती बेस कीमती खरीद के उनको दे दी। बोले जाओ इसको ओढ़ लेना, पश्चिम में और ठंडा होता है। तो आ रहे हैं, आते आते वाराणसी तक जब आए तो महाप्रभु उस समय वाराणसी में चंद्रशेखर आचार्य भवन में तपन मिश्र के वहाँ रहते थे। तपन मिश्र के माधुगुरी करते थे, क्यों? चंद्रशेखर दूसरी जाति का था, सन्यासी का नियम था ब्राह्मण के घर के अलावा हाँ माधुगुरी करे नहीं करते, कोई भक्त हो वैष्णव अलग बात है, किंतु ऐसे किसी के यहाँ नहीं खाते। तो वहाँ सनातन गोस्वामी ने सुना, जब सनातन गोस्वामी चले तो महाप्रभु ने चंद्रशेखर आचार्य को बोले एक कोई संत आया है आपके दरवाजे में, उनको लाओ। तो क्या बोले वो चंद्रशेखर, ढूंढ डाल करके देखा कोई संत नहीं। तो महाप्रभु बोले कोई नहीं है, नहीं दरवाजे में एक दरवेश खड़ा है, हाँ तेमत पहने हुए हैं और एक बोट कंबल उड़े हुए हैं, लंबे लंबे बाल और दाढ़ी बड़ा हुआ है, तो कोई पीर फकीर या दरवेश कोई बंदा होगा, अरे उसी को लाओ। लाया तो महाप्रभु को दांतों में तिनका दबा करके साष्टांग दंडवत प्रणाम की। महाप्रभु जी ने बोला जाओ भद्रवेश बना के आओ। तब जाकर के सब मुंडन करके गंगा नहा करके आया, किंतु वो जो भोट कम्बल उड़े हुए थे, तो महाप्रभु जी देख रहे हैं साधु बने किंतु अभी कुछ असर रह गया है, साधु को तो ऐसे उचित नहीं है कि इतना कीमती कंबल उड़े। तो वो समझ गए महाप्रभु जी इच्छा को, कुछ बोले नहीं, गंगा किनारे जाकर के झुगड़ी झोपड़ी वाले गुदड़ी को सुखा रहे थे, तो उनको बोला ये कंबल ले लो मुझे गुदड़ी दे दो। बोले नहीं तुम मजाक करते हो, ये बड़े आदमी हम गरीब है इसलिए। बोले नहीं नहीं ले लो। तो गुदड़ी ले ली, बड़े मुश्किल से आया तो गीले तहमत पहने हुए हैं। चंद्रशेखर आचार्य जी को बोले कोई वस्त्र दे दो, और नया वस्त्र ले आया। और नहीं, हमें नहीं चाहिए, आपके पहने हुए कोई उतरे हुए कोई पुराने कपड़े हुए तो दे दो। दो देने को तैयार नहीं, बड़े अनुरोध करके उनसे पुराने कपड़े ले ली, फिर फाड़ के दो टुकड़ा किया, एक ओढ़ने का एक पहनने का, और डोर को पेन निकाल लिया। पहने तो महाप्रभु जी खुश हुए। अब महाप्रभु जी ने 2 महीना तक रख करके वाराणसी में उनको बहुत वैदिक मार्ग से लेकर के राग मार्ग तक भक्ति के जितने अनुशीलन कैसे होना चाहिए सिखाया। उस समय महाराष्ट्रीय ब्राह्मण यहाँ तो कि वल्लभाचार्य और उधार तपन मिश्र रघुनाथ भट्ट गोस्वामी कितने लोग वहाँ महाप्रभु के निकट कथा सुनते थे। इधर ओ जो प्रकाशानंद सरस्वती महाप्रभु कीर्तन करते जाते मणिकर्णिका घाट में, स्नान करते काशी विश्वनाथ दर्शन करते, कीर्तन के साथ हजार हजार लोग उनके पीछे चलते, सब कीर्तन करते। किंतु प्रकाशानंद उनके शिष्यों को बोलते नहीं, ये बंगाली भावुक सन्यासी बर्बाद करने के लिए वाराणसी को आया, इसके पीछे तुम लोग मत जाओ। बहुत माना करते, कोई सुनते नहीं, उनके पीछे चोरी छिपे भाग जाते। हाँ, एक दिन महाराष्ट्र ब्राह्मण ने अनुरोध किया महाप्रभु को, आप वाराणसी में रह रहे हैं, प्रकाशानंद मायावादी गुरु हैं, बहुत निंदा करते हैं, बहुत चर्चा करते हैं और बहुत कटु आलोचना करते हैं, तो मैं आज सब सन्यासी को निमंत्रण करता हूँ, आपको भी निमंत्रण करता हूँ, आप आज आइए। महाप्रभु जी बोले हम कैसी निमंत्रण हम स्वीकार करते नहीं, कहीं जाते नहीं, भिक्षा माधुकरी टुकड़ा मिल जाता है बहुत है, तो भंडारा में जाके भोजन करना भूरी भोजन ये सन्यासी का धर्म नहीं है, छप्पन भोग खाया ये उचित नहीं है। जीवा लालच से इतिउति धाय शिष्णु दर परायण कृष्ण नहीं पाए, जीवा के लालच पर अच्छे अच्छे जहाँ भोजन मिलेगा वहाँ गया माधुकरी लिया तो ये भोजन करने से इंद्रिया संभाल नहीं पाएगा, इससे सन्यासियों को शाक पत्र फल फूले उदर भरण दही पत्ता साग उबला हुआ कोई चीज़ मिले कैसे भी अपने जीवन यात्रा निर्वाह करो। तो फिर भी निमंत्रण किया तो बहुत अनुरोध किया, महाप्रभु जा करके देखा बहुत सभा लगे हुए हैं, कितने हजार हजार शिष्य हैं, गुरु बैठे हुए सिंहासन में, महाप्रभु जहाँ हाथ पैर धो के अंदर जाते वहीं बैठ गए। और इतना तेज वो प्रकाशानंद उतर करके आया, आकर के बोले आप हमारे सन्यास संप्रदाय के संकट संप्रदाय के सन्यासी हैं, आपको यहाँ बैठना उचित नहीं है। महाप्रभु जी बोले इससे और पवित्र स्थान कहाँ होगा, आप लोगों के चरण धोने का स्थान है उससे कोई पवित्र स्थान नहीं है। फिर भी हाथ पकड़ करके लेके बैठाया, बोले आप वाराणसी में रहते भावुक सन्यासी कीर्तन करते हैं, सन्यासी को ये नाच गान कीर्तन नहीं करना चाहिए, वेदांत तो पढ़ना चाहिए, ब्रह्म ज्ञान और लाभ करना चाहिए, तब हमारे संप्रदाय का कुछ उपेक्षा करते हैं। महाप्रभु जी से बोला आप वेदांत तो क्यों नहीं पढ़ते, तो महाप्रभु जी ने कहा गुरु मोरे मूर्ख देखी करिले शासन, मूर्ख तुम्हें तुम्हारा ना ही वेदांत अधिकार, कृष्णनाम कर जपसदा कृष्ण मंत्र जपसदा कृष्णनाम सार। महाप्रभु जी बोले तुम हमारे गुरुजी ने बतलाया तुम पंडित नहीं मूर्ख हो, तो तुम वेदांत पढ़ने लायक नहीं हो, कृष्णनाम का आश्रय लो और कृष्ण मंत्र जप करो, यही सार है, तो मैं जप करता हूँ। बोलते आपको देख करके ऐसा लगता है नारायण समय इतना तेज है, किंतु आपको देख करके ऐसा लगता नहीं कि आप मूर्ख है, मूर्ख व्यक्ति संन्यास ग्रहण नहीं कर सकता। महाप्रभु ने बतलाया यदि साविद्यातन मृत्युर्जया, यदि भगवान में मोती नहीं लगे, भगवान का नाम स्मरण नहीं हुआ, नाम कीर्तन नहीं कर सके, तो विद्या का क्या लाभ है, से विद्यार फल जानियो निश्चय, কৃষ্ণ পাদপদ্মে যদি চিত্তবৃত্ত রয়ে, যদি কৃষ্ণ ভক্তি বিদ্যা কা পরিচয় ইয়েই হে ভগবানকে চরণমে মতি লগনা, আর যদি ভগবান মে মতি নেই লগা তো তো এই বিদ্যা কে হে ইয়ে অবিদ্যা হে। মহাপ্রভুজিকে সাথ বহুত প্রশ্ন কিয়া, উনোনে মহাপ্রভুজি নে বড়ি সরলতা সে উত্তর দি, আর ও বাতচিত করনে সে সান্নিধ্য সঙ্গকে প্রভাব সে প্রকাশানন্দ কা চিত্তবৃত্তি একদম বদল গে। হ্যাঁ, মহাপ্রভুজি নে বতলায়া কলিযুগ মে আর কই উপায় সাধনকে দ্বারা ভগত পৃথিবীধান নেই হুগা, অব আপ তো ভগবানকে রূপ মানতে নেই, ভগবানকে স্বীকার করতে নেই, হ্যাঁ, কিন্তু ব্রহ্ম পরমাত্মা ও চৈতন্য ইয়ে নাম জপ করতে হয় কিন্তু ভগবানকে রূপ স্বীকার করতে নেই। তো ভগবানকে ও বেদান্ত সূত্র আপ পড়তে হ্যাঁ, উসমে লিখা হয় ভগবানকে রূপ হ্যাঁ তো লিখা হয় অরূপবত এবহি তৎপ্রধানত্বাৎ, ভগবানকে রূপ নেই কিন্তু মৌলিক শব্দ রূপ অরূপবত হি প্রধানত্বাৎ, জগৎকে জলরূপ নেই কিন্তু অপ্রাকৃত রূপ হে। ফের মহাপ্রভুজি বতলায় অনাবৃত্তি শব্দাত অনাবৃত্তি শব্দাত, যদি পুনরাবৃত্তি ভগবানকে নামকা কীর্তন কই কীর্তন করে তো ভগবান আপনা প্রসন্ন হয়ে যায়গে, আর সবকিছু যদি করে ভগবান নাম স্মরণ নেই কিয়া তো তো উসকে ফল কোন দেগা। প্রকাশানন্দ সরস্বতী দেখা বেদান্তকে এক এক সূত্রকে লেখে মহাপ্রভুজি নে উনকে সামনে ব্যাখ্যা কি সনাতন সামনে সব শোনা। इसके बाद दो महीना के बाद जब महाप्रभु ने आदेश दिया वृंदावन आने के लिए तो वृंदावन तो आए, प्रकाशानंद उनके शिष्य लोग बदल गए किंतु क्या कहा, संप्रदाय के अनुरोध से और हम इस छोड़ नहीं सकते, किंतु कुछ कुछ बाबा जी लोग कुछ कुछ लोग कहते हैं नहीं, महाप्रभु ने प्रकाशानंद को प्रबुदानंद बना दी और वृंदावन भेज दी और उनको सिद्धि दे दी, ये सब कहीं वर्णन नहीं है चैतन्य चरिता में चैतन्य भागवत या कोई शास्त्र में नहीं है। महाप्रभु ने उनका नामकरण भी नहीं की और न वही बदल के आया हैं, महाप्रभु को आदर हुआ सम्मान हुआ और वो स्वीकार किया हैं, महाप्रभु के भाष्य सब कुछ सुना किंतु अब निंदा चर्चा से रहित हो गया हैं, किंतु वो महाप्रभु जी के इच्छा के अनुजाई सनातन के समय तो वृंदावन भेजा, उनको वृंदावन भेजा ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। प्रकाशानंद मायावादी वहाँ ही रहा वाराणसी में, क्योंकि वो अपने इतना बड़ा गुरु है अपना पदमर्यादा छोड़ा नहीं। अब सनातन के समय आए कहाँ रहते हैं, कभी काम्यवन में, कभी गोकुल महावन में, कभी वृंदावन में, कभी गोवर्धन में, ब्रज में, सर्वत्र। और रोज यदि वृंदावन रहते वृंदावन से मथुरा जाते, मथुरा हो गए गोवर्धन जाते, क्यों उस समय इतना रास्ता नहीं, गोवर्धन मथुरा में उनको मदन मोहन मिले हैं, और मदन मोहन वो भी बहुत सुंदर कथा है हैं, वो जाते देखा एक चौबेन के घर में हैं, उनका एक लड़का है सदन और उनके एक मंदिर है, वहाँ मदन मोहन जी के मंदिर दर्शन करने जाते, तो वो सुबह ब्राह्मणी चौबेन हैं एक बटलुई में घर के बाहर खिचड़ी पकाती और कैसे चलाती अपना दांतुन से उल्टा तरफ से चला देती, खिचड़ी बन गया थाली में डाल के बटे के बोलते तू खा लियो मैं जमुनाई जा रही हूँ, नहा धो करके आते आते देर हो जाएगा, तो वो बुलाते सदन, अरे मदन आ जा भैया आ जा, आ जाता दोनों गर्म गर्म खिचड़ी दोनों लूटपाट कर दोनों खा लेते, सनातन को सब रोज देखते। तो एक दिन वो चौबेन को बोले अरे मैया तेरा बेटा है तो काय को तू ऐसी करती है, दांतून से चलाती है उल्टे तरफ से और खिचड़ी बनाती है और देखे चली जाती है, कम से कम नहा धो करके पवित्र होकर के अच्छी तरह से बनाया करो। दूसरे दिन आया तो देखा बच्चे दोनों रो रहे हैं, एक नहीं दोनों पकड़ लिया, बाबा हमारे मैया को क्या कह दी, देख तू तो बूढ़ा हो गया, तेरे को भूख नहीं है प्यास नहीं है, हम तो बालक है हमें तो सुबह से भूख लग दे तड़के, तू कैसा बाबा जी है, हमें मैं को कौन सा मंत्र पढ़ा दी, हम मैं आज देख भोजन नहीं दी, अब रो रहे हैं छटपटा रहे हैं तड़प रहे हैं मिट्टी में लुटपुट खा रहे हैं। सनातन समय हृदय दहल गया, बोले अच्छा वो आई 9 बजे क्यों नहाएगी धोएगी बर्तन माजेगी साफ सुथरा करेगी तभी तो आई मंदिर जाएगी पूजा करेगी। अब वो बोलते मैया तू ऐसे मत करियो, सुबह तू जैसे बनाती ऐसे बना और मैं आप कभी नहीं कहूँगा कुछ। क्यों उन्होंने देखा एक बच्चे ने दो है, दोनों रो रहा है, उनका तो एक है और एक तो मंदिर में है, दोनों में कितना प्रेम है। अब कुछ दिन रोज दर्शन जाते, एक समय एक दिन बोले मदन बाबा अब मैं यहाँ नहीं रहना तेरे साथ जाऊँगा। तो कैसे जाएगा हाँ, ये मेरे को जीने देंगे? बोले नहीं मैं यहाँ नहीं रहता अब जाऊँगा। तो बोले चलो जाना है तो कहाँ रहेगा? बोले तू जहाँ रहेगा मैं भी रहूँगा। तो बोले चलो, बोले कैसी? बोले कंधे में करके सर में करके पालकी बनाओ रथ बनाओ। बोले ओ हमारे बस नहीं है। तो बोले मूर्ति को चलता है? तो बोले मूर्ति के बोलता है, यदि बोलता है तो चलता है चलो। तो पीछे पीछे चल चल करके यहाँ कालीधा के पास दासादित्य दादादित्य टीला के ऊपर भजन करते थे, वहाँ से पूरा वृंदावन दिखता है। तो वहाँ भजन करते तीन पत्थर को तीन तरफ लगाया, ऊपर एक रख दिया, मदन मोहन को वहाँ खड़ा कर दी, रहो यहीं रहो। अब रहते और खाने को देगा नहीं कुछ, तो जाके आटा मांग के ले आते, थोड़ा आटा का गोला बना के पत्ते वत्ते जला के उसमें थोड़ा सेंक लेते दे देते हैं। तो रे ऐसे ही देगा, न नमक है न कुछ है, ऐसे खाया जाता है? तो रे आज नमक मांगोगे, कल घी मांगोगे, मक्खन मांगोगे, फिर सब्जी मांगोगे, जसोदा माता तुम्हारा पेट नहीं भर सके, मैं कहाँ से बाबा जी पेट भरूंगा? ऐसे साधु उसके बाद काशी विश्वनाथ ने भेज दिया, जा उससे मांग ला, कुछ तो है नहीं है। मदन मोहन कहते मैं अपनी व्यवस्था बनाऊँ तो बना लो बनाओ। उन्होंने किसी सेठ को फंसा लिया और उसे नौका जहाज फंसा दी जुमना में, और फिर वो खुले नहीं, बाबा जी के पास आया सनातन गोस्वामी के पास, बोले मैं नहीं जानते मदन मोहन से पूछो। मदन मोहन बोला देख खोल तो दूंगा किंतु जितना आय होगा ना कुछ मेरे लिए घर मकान मंदिर करेगा कि नहीं? बोले जरूर। वो आगरा गया मथुरा पार करके, इतना दौलत मिला दौलतराम उससे भी अधिक करके मंदिर बना दिया, गाय रख दिया, सेवक रख दिया, अपने को भी रख दिया, मतलब सब दे दी। अब सनातन से बोले तू मेरे साथ रहे? बोले कभी नहीं रहूँगा, तुम तो लाल हमें लालच देके हमें बर्बाद कर दोगे, क्योंकि मैं फिर लालची बन जाऊँगा, खाऊँगा पीऊँगा मस्ती करूँगा और मैं तुम्हारा नाम स्मरण तुम्हारा कीर्तन भूल के केवल ऐसमोज में आ जाऊँगा, अच्छे घर अच्छे खाना अच्छा भोजन इसी के ध्यान में आएगा, कल क्या खाऊँगा अभी क्या रखना है हैं, मैं फंस जाऊँगा, मैं नहीं रमता। ऐसे विरक्त उनको शिव जी ने बोला उनके पास जाओ दौलत देंगे। क्या है उनके पास? वो ब्राह्मण बार बार कहने लग गए, बोले मेरे पास कुछ है नहीं। शिव जी झूठ नहीं बोलते, और अच्छा एक काम करो, कुछ दिन पहले मैं परिक्रमा देता था वृंदावन की, तो वृंदावन में मुझे एक परसमणि मिला हाँ, चिंतामणि परसमणि हाँ, मेरे को मणि मिला, तो वो मैं फेंक दिया कूड़ेदानी में हाँ, कूड़े को हटा कर ले जा। तो कूड़ा वूड़ा हटाया तो देखा तो मिल गया, उसने लोहा स्पर्श करा दी तो सोना हो गया, बहुत खुश हो गया, वाह अब लेके चल दिया वाराणसी जा रहा है, कितना खुश। किंतु कुछ दूर गया जाकर के सोचता है कैसे साधु है, जे धने होइया धनी मन मानवनी से धने रदीक्षानी देह हमारे, बोल रहे हो जिस धन में धनी होकर के परसमणि को कूड़ेदान में फेंक दिया, ऐसे कैसे कौन सा धन मिला है जो कि इसको भी फेंक दिया, और ये लेके मैं जाऊँ हजारों डकैत और सब रिश्तेदार नादार मेरे पीछे पड़ जाएंगे। सत्यजीत को सामंतक मणि मिली थी, इसके लिए प्राण भी गया भाई भी मरा और सब आखिरी ओक्रूर तक चोर बन गया, उसको लेके भाग गया मिथिला में हैं, कैसा दुर्दशा। दौलत मिले ना तो दौलतराम हो गया तो जान उसी समय के लिए आपद में आया, कुछ नहीं है बढ़िया है मस्त है। है ही नहीं, एक दुख है और उसमें लाखों करोड़ दुख है। अब क्या करे, लुट के आया, आकर बोले मुझे नहीं चाहिए। आपके पास कौन सा ऐसा धन है जिस धन में धनी होकर के इसको फेंक दिया, मुझे उसका टुकड़ा उसका हिस्सा कुछ दो। तो बोले अच्छा तो फेंक दे जुमुना में, फेंक दिया। बोले बैठ जाओ, हाँ तो बैठ गया। तो सनातन गोस्वामी शिष्य तो किया नहीं, किंतु किसी को मंत्र दीक्षा दिया नहीं, किंतु उन्होंने मदन मोहन के पास समर्पण कर दी। मदन मोहन इनको स्वीकार कर लो, सेवा में रख लो, ब्राह्मण देवता है, क्यों दुखी रहेगा? जब तक आपकी सेवा नहीं करता तब तक दुख के दरिया में तैरता है, और जब आपकी सेवा में आ गया फिर क्या दुख है? आप इनको अपना लो, ये मूर्ख है, टुकड़ा को लेकर ही जा रहा था, आपके साथ जुड़े नहीं, आपके साथ संबंध नहीं, आपको चाहता नहीं, दुनिया चाहता है किंतु आपको नहीं चाहता। आप विश्व के मालिक है, सब कुछ है आप, हैं प्रभु से प्रार्थना की। तो साधु संत गुरुवर्ग आचार्य उनका यही काम है, वो किसी को नहीं कहता तुम्हारा औलाद है, तुम्हारा शिष्य है, तुम्हारा अपना है, हैं और सब सपना है, ऐसा नहीं। वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, हैं आप प्रभु के हैं, प्रभु को छोड़कर के कितना दुखी है, हैं अभी जिम्मेदारी है, ये काम करने हैं, वो काम करने हैं, अरे सारी जिम्मेदारी तो मालिक क्या है, हमें क्या जिम्मेदारी है? वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम स ईश्वर, हैं ईश्वर जगत को सृष्टि किया रचा, उनका सारी जिम्मेदारी उनकी है, हम मालिकाना क्यों करने जाते? जहाँ मालिकाना करते हैं तो प्रभु बोलते मैं क्यों उसके अंदर हाथ डालूँ, हक उसके अंदर जाऊँ? जहाँ प्रभु के पास शरणागति है तो वहाँ क्या बाकी रहा? सबको नार दिया तो आहार दिया, जन्म मिला तो उसको पालनहार तारनहार हुई है। तो सनातन गोस्वामी ने उनको समझा बुझा करके ओ मदन मोहन की सेवा में लगा दिया। अब तो मदन मोहन ने स्वीकार कर ली, मदन मोहन का मंदिर बन गया, सेवक आ गए कितने सारे, गाय बन गए, छपन भोग, वो ब्राह्मण हैं भूल गए। भगवान की सेवा कोई साक्षात किसी को मिले? आज तो सब कुछ उसके पास है, किंतु सनातन गोस्वामी चल दिए, एक मिनट नहीं रहा। क्या कर रहे हैं? ये दामोदर लीला में दामोदर की लीलाओं का कीर्तन कर रहे हैं। कहाँ? ब्रज की गलियों में, बिथियों में, कहीं बैठते हैं सत्संग, हाँ हरिकथा कीर्तन करते करते ये दामोदर लीला ब्रज की गली गलियों में सुनाया सुनाते रहे, जगह जगह पर हाँ व्रत का पालन करते रहे। क्या हुआ? सारे ब्रजवासी कैसे हो गए? सब उनके अनुजाई हो गए। बोलते बड़े बाबा, उनका नाम देते बड़े बाबा, रूप गोस्वामी कहते छोटे बाबा, हैं यहाँ तक कि जिस दिन चतुर्मास शुरू होता है गुरु पूर्णिमा, उस दिन उन्होंने जगत को जगत से नित्य धाम में जाने की तैयारी की। ब्रजवासी इतने दुखी हुए, सबने अंतिम यात्रा में सबने मुड़मुड़ाया, इसे नाम कर दिया मुणियापुन। उनके अर्थी को लेकर के गोवर्धन की परिक्रमा की पूरा, फिर राधाकुंड में सामुंड स्नान कराया, जमुना में उनको स्नान करा कर तिलक आदि करके फिर मदन मोहन के पास में मदन मोहन की इच्छा से वहाँ उनको समाधिस्थ की। बोले बाबा वृंदावन छोड़ के नहीं जाना है और चिरकाल रहना है। बोले अभी भगवान का इच्छा है, मैं जा रहा हूँ, किंतु मेरा ये कलेवर तुम्हारे लिए इधर ही रहा, चिरकाल सबके मन भीष्ट पूरा होगा यदि तुम लोग मदन मोहन को अपना समझोगे तो। और यदि भगवान भगवान के भक्त में कितना ममता है, कितना प्रियत्व एक ही तो एकत्व है, भगवान विग्रह रूप में मदन मोहन वहाँ बैठे हैं, अपने सेवक को दूर थोड़ी हटाएंगे हैं? रूप गोस्वामी अपने हैं बैठे हैं कहाँ, जहाँ दामोदर को उन्होंने प्रकट की और जीव गोस्वामी को सेवा दी, वहाँ ही नित्यकाल के लिए रह गए, विराजमान हो गए। तो संत साधुओं का हृदय कैसा है? इससे जब दामोदर लीला वर्णन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, उसके टीकाएं लिख रहे हैं और दामोदर स्वयं प्रकट हो गए। आज जहाँ राधा दामोदर मंदिर में दामोदर जी हैं, हैं यहाँ पहले तो जंगल था सेवा कुंज, वहीं रघुनाथ भट्ट गोस्वामी कथा करते थे, सारे ब्रज कथा सुनने आते। वो कहाँ से, आगरा से रोज कथा सुनने आते, सोचो हैं, घोड़े में सवार होकर के। कहाँ जयपुर से मानसिंह और दिल्ली से बादशाह के एक से एक सेनापति, सारे लोग रघुनाथ भट्ट गोस्वामी कथा सुनने आते, जिनको महाप्रभु जी ने दो महीना वाराणसी में रह करके कथा सुनाया था हैं, और आदेश दिया ब्रज में जाओ कथा भागवत कथा का कीर्तन करो और सबको रसपान कराओ। तो जब ये गोस्वामी जन यहाँ रहे, जब दामोदर लीला वर्णन कर रहे हैं, दामोदर से रहा नहीं गया, दामोदर साक्षात प्रकट हो गए। कहाँ तो 5,500 साल पहले द्वापर युग में ये लीलाएं हुई, और आज ये लीला कथा का कीर्तन के फल क्या हुआ, राधा दामोदर जी स्वयं प्रकट होकर के सबको दर्शन दे रहे हैं, सबको कृपा कर रहे हैं और अपने रसमयी कथा को पान कर रहे हैं हैं। इसलिए ये वृंदावन धाम में यदि भगवान के नाम रूप गुण लीला का कीर्तन कोई करे तो उनके समान कोई भाग्यशाली नहीं है हैं। क्यों? भगवान स्वयं सुनते हैं हैं, वहाँ कहते हैं, गुरु जी के लिए प्रार्थना करते हैं, श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्ष हैं, औदार्य माधुर्य गुणस्य युक्तम परम वरिण्यम पुरुषम महान्तम नारायणम तम शिरसा नमामि। गुरु जी ने कहा देखो तुम्हारे साधन त्राधन होगा नहीं, तुम तपस्या कर नहीं सकते, संतों की सेवा करो और भगवान के लीलाओं का कीर्तन करो, नहीं आता है, टूटी फूटी भाषा में भी कीर्तन करोगे तो छोटे छोटे बच्चे तोतली भाषा में बात करता है तो माँ बाप प्रसन्न हो जाते हैं, सब सुनता है। तो भगवान के इतना ज्ञान तो है नहीं कि भगवान के बड़े पांडित्य के साथ उनके कीर्तन और कथाओं का वर्णन करें, केवल स्मरण करो, जो गुरुवर्ग सुना उसको कीर्तन करो। ये लीला कथा लीला रस सुधा पान करने से हैं हृदय में हैं अनर्थ क्या अर्थ परमार्थ उसको छोड़ो, भगवान साक्षात रूप में विराजमान होकर के उन कथा का रस को पान करके मस्त होकर नित्य करने लग जाते हैं। इससे सनातन गोस्वामी ने वहाँ बतलाया, जहाँ जहाँ गोस्वामी जन जाते थे ब्रज के एक एक गलियों में, वहाँ ही कीर्तन करते और कथाओं का शुरू करते, सब ब्रजवासी जन बैठ जाते। फिर बाबा से कहते, बाबा तेरे लिए माधुकुरी लाऊं। एक दिन सनातन गोस्वामी पवन सर्व में भजन करते हैं, रूप गोस्वामी टेरकदम में भजन करते हैं, तो एक दिन बोले जाऊं रूप से मिल के आऊं, क्या ग्रंथ प्रकाशन कर रहे हैं। जाकर के देखा वो तो बहुत भारी सुंदर अच्छा ग्रंथ प्रकाशन में लगे हुए हैं, तो क्या उज्जवल नीलमणि हैं, जो उन्नत तो उज्जवल रस क्या है महाप्रभु जी ने कहा हैं, और वो नीलमणि स्वयं भगवान कृष्ण उसको उन्नत तो उज्जवल रस के हैं पिपासु हैं, तो उसको वर्णन कर रहे हैं और उधर लिख रहे हैं और उधर कीर्तन कर रहे हैं। सनातन गोस्वामी गए सुबह सुबह, जब बैठे वो रसों की आलोचना होने लग गया, सुबह से शाम हो गया, कोई माधुकुरी करने गए नहीं, जंगल है और नंदगांव दूर है, उधर जाबट दूर है, उधर खैरा दूर है, बीचों बीच में ये भगवान के खिड़क है ये, तो वहाँ दोनों भाई कीर्तन कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं। शाम हो गया, छोटी सी एक बालिका लड़की आई, आके कहती है, बाबा क्या तुम लोग इतना मस्त हो गए, आज माधुकुरी लेने भी नहीं आए, हमारे मैया ने कुछ दूध भेज दिया और गाय काढ़ा, दूध को पी लेना। फिर आ गई, अरे सुनता नहीं है, कैसा रसपान कर, कैसा मत वाला हो गया, हम बोल रहे हैं तुम्हारे लिए तो सुनते नहीं हो। अच्छा ठीक है, मैं इसको गर्म करके खीर बना करके तुम्हारे लिए रख के जाती हूँ, नहीं तो देर हो जाएगा, मेरे मैया सोचेंगे कहाँ चली गई। तो मैं अब कहाँ से लकड़ी कांडे इकट्ठा की, बर्तन इकट्ठा की, खीर बनाया और धर के बोले मैं जा रही हूँ। जब कथा समाप्त हो गया, रात हो गया, तो रूप गोस्वामी कहते भैया आप तो आए, मैं तो आज कुछ भी माधुगुरी ऐसा नहीं कि जमा करके रखा हो पेड़ के नीचे कहाँ रख। तो अभी बालिका आई थी पता नहीं कौन से गांव की, मैं तो सब जगह जाता हूँ, तो अब खीर बना कर छोड़ गए। तो हम भगवान को समर्पण करते हैं लाला को, नंदा लाला को, और फिर आप भी कुछ ले लो मैं भी कुछ लेता हूँ। जब वो खीर को समर्पण करके ग्रहण करने लगे तो क्या देखा, वो रोमांचकंप पुलक श्वेत वैवर्ण अशक्ति विकार नहीं हृदय द्रवीभूत होकर के एकदम साक्षात ईश्वरी का एक एक कण कण में दर्शन करने लग गए। ओहो कैसे हैं, हैं समय हुए हैं सब जगह, किंतु आज हैं दर्शन देने आई और चिरकाल के लिए हम वंचित रह गए। उनके ही कथा कीर्तन कर रहे हैं, उनके ही महिमा, क्यों भागवत में वर्णन है 18,000 श्लोक है किंतु 5,000 श्लोक करीब करीब 4,500-5,000 उखाड़ करके फेंक दिया इस मायावादियों ने, केवल 13,500-13,000 रह गया। जहाँ ब्रज की देवियों का वर्णन है नाम भी नहीं, राधा रानी का नाम भी उखाड़ के फेंक दिया, कोई राधा रानी का नाम मधुरस का कोई भी कीर्तन आलोचना रहा ही नहीं। तो हमारे महाप्रभु के आदेश से सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी और सरल गोस्वामियों ने, द्वादश गोपाल सृष्टि महंत अष्टकविराजों ने पुनः इन श्लोकों को संग्रह करके ये सब प्रकाश किया और स्थायी रूप में रखा। तो इसलिए यदि भागवत पढ़ना है जानना है तो दो प्रकार भागवत है, एक भक्ति रसपात्र, भक्ति रस शास्त्र। तो ये शास्त्रों को अध्ययन करने से तो भक्ति रस को प्राप्त कर सकते हैं और ब्रज रस को प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो आजकल जो भागवत अनुशीलन हो रहा है या पठन पाठन करते हैं उसमें राधा रानी का एक नाम निशाना, किसी गोपी का नाम कुछ भी नहीं है, वो लोग ये बोले ये उखाड़ दिया। दूसरे से संप्रदाय वाले बोलते हैं हैं कृष्ण के साथ राधा रानी का संबंध ही क्या है, रुक्मिणी क्या साथ विवाह हुआ, रुक्मिणी हो सकते उनके पार्टनर नहीं, राधा रानी क्यों होंगे हैं। इसलिए महाप्रभु की इच्छा से सनातन गोस्वामी ने सब कुछ प्रकाश किया, रूप गोस्वामी ने। तो ये दामोदर लीला रस ऐसे हैं यदि कोई नित्य निरंतर पान करे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो दामोदर मास में गुरुवर्गों ने कहा हैं, विशेषकर हमारे परम गुरु जी ने भी इसके ऊपर टीका लिखा, गुरु जी ने दिग्दर्शी ने वृत्ति लिखा, इस पठन पाठन करे, कीर्तन करे, उनके दर्शन, उनके परिक्रमा, उनके प्रार्थना करे तो जन्म जन्मांतर जो हम बिछुड़ गए दूर हट गए उनके बंधन में आकर के कभी हम अलग नहीं हो सकते, दामोदर हमें सदा के लिए अपने चरण में स्थान दे देंगे। इसलिए ये दामोदर मास दामोदर लीला का गौड़ी वैष्णव सदा सर्वदा प्रवचन कीर्तन कथा कीर्तन लीला कथाओं का श्रवण कीर्तन करते हैं, किंतु आनुष्ठानिक ही नहीं, केवल मात्र लोग देखा ना गोरा बजा तिलक मात्र धरी गोपन चतार गोराधर चूरी, केवल लोगों को दिखाने के लिए हमारा दामोदर व्रत है, हम व्रत पालन करते हैं, हैं एक टाइम भोजन करते हैं, फलाहारी खाते हैं, दंडवती परिक्रमा करते हैं और बहुत हम नियम पालन करते हैं, हैं किंतु इतना कठोर नियमों को पालन करने जा करके हैं भगवत सेवा, साधु सेवा, कीर्तन और कथा सबसे हम वंचित हो गए, दूर हो गए, क्यों हम एक नियम ले लिया, हमें ये नियम पालन करना है, किंतु मुख्य नियम तो ऐसा नहीं। इसलिए कहा जहाँ हरिरस लीला शिखरणी वैतरणी जहाँ प्रवाहित हो रहा है तस्मिन् मुखरित मधुबीष चरित्र पीयूष शेष स्वरित परित सवंती ताजे पिबंत ब्रिटिश गाड़ी पकड़ नहीं तान अतिल भय सुख मोह अपहा। यदि कोई संत महात्मा ये दामोदर लीला का कीर्तन करते हैं या जैसे नदी के प्रवाह स्रोत चलता है कभी बंद नहीं होता, अविच्छिन्न गति से तैल धारावत, उसको पान करना मात्र ही यही हमारे लिए साधन है। बस कथा का श्रवण करे, श्रवण करते ही अंदर चला जाएगा तो जाकर के वो शक्ति संचार कर देगा है। और ये कथा भय शोक मोह दूर करके हमें सदा के लिए भगवान के चरणों में अपने नित्य सेवा प्रदान करेंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं, कल हम लोग आगे सुनेंगे। कल ऐसे ग्रहण है किंतु हमारे वैष्णव संप्रदाय में ऐसा नियम है, स्मार्टों के विचारों को लेकर के हम लोग चलते नहीं। हमारा शाम को 5 बजे से लेके 6 बजे तक 1 घंटा के लिए ग्रहण है। उस समय ग्रहण के समय अन्न जल ग्रहण करना, कोई सोना टट्टी पे सब जाना सब वर्जित है। इससे उस समय केवल कीर्तन होता है। आदि को अकेला होता है तो कीर्तन नहीं करते हैं, तो माला जप करते हैं, कोई मंत्र करते हैं, कोई प्रज्वलन पर नहीं, क्योंकि उसमें ग्रहण में नियम है, जो मंत्र करेगा तो उनको वो मंत्र की सिद्धि हो जाता है। ऐसे 2 बत्ती से सूतक मुतक लगेगा 6:30 तक, तो 2:30 से लेके 6:30 तक रस्सी वस्सी बनते नहीं, भोग राग होते नहीं, किंतु भगवान की सेवा बंद नहीं करते हैं। जिनका प्रीति है प्रेम है वो बंद नहीं। 1 घंटा जो ग्रहण यहाँ के लिए है तो उस समय हरि कीर्तन होना ही आवश्यकता है। तो कल परिक्रमा के बाद सुबह करेंगे लोग, जैसे नियम है कथा कीर्तन के बाद फिर हवन होगा, हवन के बाद में जल्दी भोगराग हो जाएगा तो महाप्रसाद 12:01-2 के अंदर में अपने सिलटाना है। फिर बाद में सभी लोग कीर्तन में आकर बैठे तो एक कीर्तन चलता रहेगा, फिर 6:30 के बाद नहा धोकर के फिर रस्सी बनेगी, ठाकुर जी भोगराग होगा। बीच में जो ठाकुर जी का सेवा बंद नहीं होगा, ये नहीं कि ठाकुर जी को भी सेवा छोड़ दिया जाए, नहीं, उनका जो नित्य सेवा है वो तो नित्य चलेगा। ऐसे तो मथुरा में द्वारकाधीश है और भी वल्लभ संप्रदाय के, ग्रहण के समय लोग मंदिर खोल देते हैं, ठाकुर जी के सामने बैठो, कीर्तन करो, ठाकुर जी का दर्शन करो, तुम्हें ग्रहण छुएगा नहीं। किंतु स्मार्टों के विचार अलग है, वो लोग तो मंदिर के दरवाजा बंद कर देंगे तो ठाकुर जी तुम मरो या जियो, पाने के लिए तड़पो या छटपटाओ, कोई मतलब नहीं, हम अपने मतलब से मतलब रखते हैं। तो ऐसा नहीं, वैष्णव विचारों से हम लोगों को चलना है। तो कल ये फिर परसों रोज अन्नकूट है, तो गोवर्धन में सुबह यहाँ के कथा कीर्तन के बाद 7 बजे कुछ लोग जाएंगे, अभिषेक करेंगे, भोगराग करेंगे, और वहाँ गिरिराज जी की अन्नकूट करेंगे, किंतु सब लोग नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ भी अन्नकूट होगा। इसलिए जो वृंदावन की परिक्रमा करने वाले रोज दिनों तो करेंगे, फिर आके अन्नकूट की तैयारी करेंगे, यहाँ अन्नकूट करेंगे। किंतु हम लोगों का जो अगले महीना 20 नवंबर को जब व्रत समाप्त हो जाएगा तब व्रत यात्रा होगा 1 हफ्ते के लिए या 10 दिन के लिए व्रत यात्रा करके, क्योंकि इस समय व्रत यात्रा में जाने से सब नियम सेवा सब उल्टा पुल्टा हो जाता है, तो उस समय जाके परिक्रमा 1 हफ्ता 10 दिन का हो गए होंगे, फिर गिरिराज जी में अन्नकूट करेंगे बड़े रूप से, उस समय कात्यायनी व्रत चलेगा, उस समय करेंगे। किंतु इस समय परसों रोज जो गुरु जी की इच्छा है, गोवर्धन में हर साल अन्नकूट करते थे, इसलिए सब लोग नहीं जाएंगे, कुछ लोग जाएंगे, क्योंकि सब लोग चले जाने से फिर यहाँ ठाकुर जी के भोग राग और इतना भक्त लोग संभव नहीं हो पाता है, इसी कुछ कुछ लोग जाके अभिषेक करके प्रसाद भोग लगा करके वहाँ खिला पिला के सबको चरणामृत के आ जाएंगे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।